तो पार्वती से कहते हैं तुम ही बैल पर बैठ जाओ, आगे चलते हैं। लोग कहते हैं ऐसी निष्ठुर नारी, ऐसी पत्नी आज तक नहीं देखी, अपने पति को पैदल चलाती है और खुद आराम से बैठी हुई है। पार्वती को लगता है ये मैंने क्या कर दिया, वो उतर जाती है और शंकर जी को बिठाती है। आगे जाते हैं, लोग कहते हैं कैसा पति है, पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए, पति परमेश्वर है, वो चल रही है और खुद बैठा है। शंकर जी बाद में उतर जाते हैं और आगे जाते हैं, सोचते हैं कि अब दोनों ही बैठ जाते हैं, तो दोनों ही बैल पर बैठ जाते हैं नंदी पर और आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कैसा जमाना आ गया, पशु कुछ बोलता नहीं, उसके कितना भी अत्याचार उस पर किए जाओगे। तो वो दोनों ही उतर जाते हैं, सोचते क्या करें। तो शंकर जी आगे की दो टांगे पकड़ते हैं और पार्वती बैल की दो टांगे और पकड़कर दोनों चलने लगते हैं। लोग कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग आज तक नहीं देखे, चाहे कुछ करो या ना करो, दुनिया वाले तो कहेंगे ही, आसमान की तरफ देख के चलो तो कहेंगे इनकी नजर का ठिकाना नहीं, नीचे नहीं देखते, नीचे देखो तो कहेंगे कभी ऊपर भी देखा करो, यहां वहां देखो सब जगह तो कहेंगे जरा भी संयम नहीं, आंखें फोड़ दो तो कहेंगे कर्मों का फल। दुनिया वाले कुछ ना कुछ तो कहेंगे जरूर, पर हमें रुकना नहीं है। जिस पथ पर, जिस मार्ग पर हम निकल पड़े हैं उसमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है, और इस मार्ग में बहुत सारे नियम है और बहुत सारी मर्यादा है। वो कौन सी मर्यादा है, वो कौन से नियम, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। नियम तो आप शायद सभी जानते हैं, जिसकी हमने कल भी थोड़ी चर्चा की थी। नियमों की हम चर्चा कम करेंगे, मर्यादाओं की चर्चा करेंगे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली मर्यादा संपूर्ण पवित्रता, पहली मर्यादा संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्माचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होना, आत्मा अपने ब्रह्मलोक में स्थित हो जाए और उसकी जो अवस्था है वह ब्रह्मचर्य है। एक दूसरा ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा समान आचरण, तीसरा वह आचरण जो हमें जो श्रीमत अनुसार है, ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी आचरण, ब्रह्मा समान आचरण। इस ईश्वरीय विद्यालय में सबसे पहली मर्यादा है संपूर्ण पवित्रता। यदि पवित्रता नहीं और बाकी सब है तो कुछ भी नहीं है। इस यज्ञ में दादियों ने जो कुछ सहन किया और इस यज्ञ की माताओं ने जो कुछ सहन किया, क्यों सहन किया? पवित्रता के लिए। यज्ञ के इतिहास में देखो तो भयंकर अत्याचार, उसका शायद कभी वर्णन भी नहीं है। उन यज्ञ की माताओं ने जो कुछ सहन किया, भूखा रखा गया, मारा गया, तांत्रिकों को बुलवाया गया, किसी माता को खटिया के नीचे दबाया गया और तांत्रिक ने उसके शरीर पर प्रयोग किए थे, क्यों ये सब पवित्रता की? सारा यज्ञ पवित्रता पर खड़ा है। ब्रह्मा बाला से लोगों ने आकर कहा कि ये पवित्रता की प्यूरिटी की ये धारणा हटा दो तो आपके इस संस्था में हजारों लाखों आ जाएंगे, इसको हटा दो। बाकी संस्था आपकी बहुत अच्छी है पर लोग कम है उस समय। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा आ जाए, लाखों की संख्या हो जाए, इसको उतना हटा दो। बाबा ने क्या कहा था? मुझे फिर बकरियां नहीं चाहिए, शेर और शेरनी चाहिए, जो दहाड़ लगाए और संसार की आत्माओं को जगाए। जब इस यज्ञ का आधार स्तंभ की पवित्रता है तो क्या हमारी पवित्रता बार बार भंग तो नहीं होती, खंडित तो नहीं होती? बाबा ने कहा है अगर मुंह काला किया, साकार महावाक्य, एक साल तक मुंह नहीं दिखाना। एक समय आएगा, अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, मधुबन मर्दान भूमि में लोग कहेंगे हम अपना शीश काट कर देते हैं, हमें आने दो, तब भी आया नहीं दिया जाएगा, आने नहीं देंगे। धर्मराज की सभा है, इंद्र सभा है, यह मूल्यों में आता है। यदि कोई ब्राह्मणी किसी पतित आत्मा को ले आकर बैठती है तो दोनों ही नर्क के भागी होंगे। काम के लिए कहा है कालम, क्रोध के लिए नहीं कहा है, लोभ के लिए नहीं कहा है, अहंकार के लिए नहीं कहा है। भगवान आया है एक ही कार्य करने, पतित को पावन। काम के लिए कहा है सातवीं पांचवीं मंजिल से नीचे गिरना, क्रोध के लिए नहीं कहा है, लोभ के लिए नहीं कहा, मोह के लिए नहीं कहा, अहंकार के लिए नहीं कहा, काम के लिए कहा है। बार बार मूल्यों में आता है तुम्हारा एक ही संबंध है भाई और बहन, बार बार मूल्यों में आता है तुम्हारा एक ही संबंध है भाई भाई। इसलिए अपनी इस धारणा को सबसे पहले मजबूत करना है, चाहे स्त्री या पुरुष, भाई या बहन, कोई भी हो, क्योंकि अध्यात्म के जीवन का मूल आधार ही ब्रह्मचर्य और पवित्रता है। बिना ब्रह्मचर्य के वो तेज नहीं आ सकता, वो सामर्थ्य नहीं आ सकता। इसके लिए ये भट्टी एक अवसर है अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को फिर से दोहराने का। चाहे कुमार है कुमारी, चाहे यहां है या गृहस्थ में है, चाहे मधुबन में, कोई भी कहीं पर भी, सबके लिए एक ही धारणा है संपूर्ण पवित्रता। क्या मन किसी देह में फंसा तो नहीं है? क्या कोई देह उसे बार बार आकर्षित तो नहीं करता? और यदि हां तो वो बल भी नहीं करेगा और शक्ति भी नहीं आएगी। दिखावा कर सकते हो, आडंबर कर सकते हो, दंभ होगा पर वो झूठ होगा और झूठ ज्यादा समय नहीं चल सकता। योगी होने का ढोंग ज्यादा नहीं चल सकता। सत्य पाप है, सत्य यज्ञ है, सत्य की नाव है, असत्य की नाव डूबनी है। यदि हृदय में खोट है अर्थात हृदय में किसी और को बिठा के रखना है, ऐसे बच्चे बाप को सिखा ले नहीं। यहां सब कुछ ठीक, पर घर जाने के बाद कुछ कुछ अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करनी है, बार बार दोहराना है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, और कर रहा है तो शायद वो हमारी ही कमजोरी है, हमारा ही कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में या व्यक्तियों में मोह है। और इस जीवन में यदि आगे बढ़ना है, एक ही शक्ति चाहिए, पवित्रता। अगर इसमें फेल और बाकी सब सब्जेक्ट ठीक चल रहे हैं, सेवाएं बहुत कर रहे हैं, उंगलियों की पॉइंट्स लिख रहे, सेंटर जा रहे, अमृत वेला उठ रहे, दिन रात यहां वहां दौड़ रहे, परंतु मन में वासनाएं छिपी, तो क्या वो सेवा स्वीकार होगी? प्रतिज्ञा को रोज दोहराना है, एक स्वयं से प्रतिज्ञा करनी है और एक बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। यदि अपवित्रता का कोई भी कार्य होता है, उसे थोड़ा नहीं समझना, थोड़ा नहीं बहुत है। सुनो, कान खोल कर सुनो, दोनों ही कान खोल कर सुनना, ये जैसे सफेद कागज पर काला दाग है। ब्रह्मा ने जो गालियां खाई, दादियों ने जो गालियां खाई, इस एक चीज के लिए खाई। अगर कोई सोचता है हम अपने विकार को छुपा दे, कौन देखता है, किसको पता चलता है? पग बिनु चलही सुनई बिनु कान, he that planted the ear shall he not hear, he that planted the eye shall he not see, जिसने आंख दी है क्या वही नहीं देखेगा, जिसने कान दिया है क्या वही नहीं सुनेगा, उसकी नजर सर्वत्र है। मैं निराकार साकार महावाक्य सब कुछ जानता हूं, इसके लिए प्रायश्चित और पश्चाताप करो। बाप को सुना दो, छिपाओ नहीं, छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी। और यहां कुछ भी छिप नहीं सकता, ना सत्य ना सत्य, ना पाप ना पुण्य। अपनी पवित्रता को फिर से दृढ़ करना है, चाहे पति हो या पत्नी, कुमार या कुमारी, समर्पित या गैर समर्पित, नौकरी करने वाले या न करने वाले, कोई भी, मुख्य धारणा एक है। और पवित्रता की धारणा बिना साधना के और बिना तपस्या के कभी पूर्ण नहीं हो सकती, सफल नहीं हो सकते। मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। दूसरा, ये जो यहां पर बैठे हैं कौन है? ये जो बैठे हैं कौन? शिव की शक्तियां। यदि कोई किसी मंदिर में जाए, देवी कोई पुरुष कोई कुमार, और उस देवी के प्रति उसके मन में बुरे संकल्प और कुदृष्टि जागृत हो जाए, तो उसे खुद को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? और वो बात यदि दूसरों को पता चल जाए तो उसका क्या करेंगे? भाई बताएं, दूसरों को पता चल जाए ये व्यक्ति कुदृष्टि से इस संतोषी मां की देव मंदिर में घुसा है, मंदिर से भगा देते। ये जो यहां है किसने रखा है इनको? स्वयं भगवान ने रखा है। किसने चुना है इनको? भगवान ने चुना है, इसलिए इनको साधारण समझने की भूल न करना। चाहती तो ये भी संसार में कुछ कुछ कर सकती थी, नौकरी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, नाम, शान, घर, गृहस्थी, बच्चे, परिवार, पति, संबंधी, जिन्होंने यज्ञ की वेदी पर अपने यौवन को अर्पित कर दिया है, अपने जीवन को स्वाहा कर दिया है, ऐसी अर्पिता है, निवेदिता है और समर्पिता है, साधारण नहीं हो सकती। इसलिए सभी भाई और सभी कुमार और सभी अधर कुमार जो सेवा केंद्र बना रहे हैं, किस दृष्टि से देखेंगे? कौन है? स्वयं शिव शक्तियां है, भगवान ने चुना है। वो चाहता तो किसी और को भी चुन सकता था, पर उनको नहीं चुना, इनको चुना। जरूर कुछ तो देखा होगा, जन्म जन्म की ऐसी आराधना की होगी, किस अनन्य भाव से ईश्वर को पुकारना होगा। महाभारत में दृश्य है एक रास का, कृष्ण रास कर रहा है सभी गोपियों के साथ, हर गोपी के साथ एक कृष्ण दिखाया है। हर गोपी की इच्छा है कि कृष्ण मेरे साथ डांस करे, मेरे साथ नृत्य करे, और दिखाया है एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। और उसी सीन में एक सीन आता है, वो गोपी हट जाती है और वहां एक साधु, एक संत, जिसने जन्म जन्म कृष्ण को पुकारा था, और भगवान आते हैं धरा पर और अपने सभी भक्तों की पुकार सुनते, इच्छा पूर्ण करते, अनेक रूप धरते, प्रभु धरि विविध शरीर। और भगवान किनको चुनता है? जो संपूर्ण पावन होगी, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी जहां ऐसी ये सभी यहां बैठी और बाबा के घरों में सब जगह जो है वो सभी बैठे। कौन है? वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही, वही जिन्हें भक्त पुकार रहे हैं, हे पापनाशिनी, हे जगत माता, हे जगत जननी, हे शारदा। क्या हमारी दृष्टि निरंतर ऐसी रहती है? क्या हम भी इसी उच्च भावना से उन्हें देखते हैं? यह हमारी दृष्टि भी कभी कभी चलायमान होती है। दूसरी मर्यादा है आत्मिक दृष्टि, समान की दृष्टि। और सभी माताएं क्या समझती है? कौन बैठी है? छोटी छोटी बालिका है, इनको क्या पता इन्होंने क्या जीवन देखा है? जीवन तो हम जानती है, क्या सोचती है? क्या सोचती है? जीवन इन्हें जानने की आवश्यकता नहीं, जिस दलदल में संसार फंसा है उनसे वो बाहर है। गटर में जाकर यह पता करना कि यह गटर है आवश्यकता नहीं। जो जन्म से ही पवित्र है, बाल ब्रह्मचारिणी है, उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं। और वो क्या सोचते हैं जो नौकरी करते हैं? ऐसा तो नहीं सोचते कि ये नौकरी नहीं करती, ऐसा तो नहीं सोचते हम कमाते हैं ये तो इन्हें क्या पता कितना कष्ट है कमाने में, इन्हें क्या पता ये तो यही रहती है सेंटर पर, बाहर निकलो तो पता चलेगा। बाहर वो नहीं निकलेगी, तुम आकर देखो अंदर, फिर पता चलेगा। सिक सिक चुप चुप मैं कर पगो पगो कर परीक्षाएं जीवन में, और फिर भी सभी परीक्षाओं को पार करती हुई, सहन करती हुई आगे बढ़ रही है। किस लिए? किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, एक परमात्मा के लिए। सभी माताएं और वो सभी कन्याएं, ये बोलना नहीं। जो ये सब है यहां बैठे कौन है? क्या अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा है? जो कुछ कर रहे हैं यज्ञ के लिए, हम तो संसार में फंसे और वहां फंस कर भी हमें दोष दिखाई देते हैं, तो क्या है? तीसरी मर्यादा, सेवा केंद्र का वातावरण। यहां आकर यदि संसार की चर्चा कोई करता है, यहां आकर कोई बाहर की चर्चाएं करता है, बिजनेस की चर्चाएं करता है, तो उसको क्या कहेंगे? कौन सी जगह है? बाबा ने कहा योग आश्रम। यहां के वातावरण को जो दूषित करेगा अपने विकार के, व्यर्थ के और नकार निगेटिव संकल्पों से, यज्ञ का दोषी है। इसलिए इस वातावरण को पवित्र बनाने की जिम्मेवारी भी हमारी है, और यदि हम उसको पवित्र बनाते हैं बनाना वो भी है। चौथा, गुटबाजी। आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, भाई माताएं कुमारियां, और षड्यंत्र करते हैं, अपनी प्लानिंग खुद करते हैं, दबाव डालते हैं, जबरदस्ती करते हैं। इसको क्या कहेंगे? ईश्वरीय मर्यादा है श्रीमंत? समझते हैं इनसे ज्यादा होशियार हम हैं, हमारी अच्छी प्लानिंग होती है, इनको क्या पता, हम बताएंगे क्या करना है। पता तुमको होगा, पर भगवान को प्लानिंग में ही पवित्रता चाहिए। तुम्हारी विकारी बुद्धि प्लानिंग करेगी, परंतु लक्ष्य तक पवित्रता हो जाती है। बुद्धिमत्ता नहीं, पांडित्य नहीं। पंडित तो संसार में भरे पड़े हैं, सब जानते हैं, सारे शास्त्र कंठस्थ है। बुद्धिमान लोगों की संसार में भरमार है, पर पवित्रता का अकाल है संसार में, वो यहां है। इसलिए अपने आप को अधिक होशियार समझने की भूल भी मत करना। चौ पांचवा, हमारे मधुबन में बहुत जान पहचान है, हमें किसी के पूछने की आवश्यकता नहीं, हम तो वैसे ही रहेंगे, अनुभव भी वैसा ही होगा। फिर पाई पैसे का कुछ चाहिए तो हमको बताना, हम मधुबन में फोन कर देंगे, हमारी बहुत जान पहचान है। यहां से मैं जाके क्या ईश्वरीय श्रीमत है। अगला, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जब जाते हैं या यहां से मधुबन जब जाते हैं, एक लेटर की आवश्यकता है। कोई सोचते हैं हमारी पहचान बहुत है, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, वो बहन जी तो हमको जानती है, चाहे मन चाहे दूसरा सेवा के। अगला, घनिष्ठता संबंधों में फैमिलियरिटी, संबंधों में फैमिलियरिटी। मैंने यहां है, हम यदि यहां, दोनों के बीच एक डिस्टेंस चाहिए। यदि हम सोचते हैं ये डिस्टेंस दूर हो जाए और हम बहुत समीप आ जाए, वहां सेवा नहीं अनर्थ होगा। सभी कुमार और भाई, यदि इसको भूल जाए तो अनर्थ होते हुए देखा गया है। या कुमारी और कुमार, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखी है शोशिर कविता, उसमें एक प्रेमी है एक प्रेमिका है, उस कन्या को उस पुरुष से बहुत प्रेम है, उस पुरुष को भी उस स्त्री से बहुत प्रेम है, दोनों ही विवाह करना चाहते हैं। वो पुरुष कहता है कि हम विवाह करेंगे, वो भी कहती है हम करेंगे, परंतु वो एक शर्त रखती है, वो बहुत रईस है, वो गरीब है। वो स्त्री कहती है विवाह तो मैं तुमसे करूंगी, पर एक शर्त है, विवाह के बाद तुम और हम साथ नहीं रहेंगे। वो कहता है क्या, ये कौन सी शादी है, ऐसा भी कोई विवाह होता है? वो कहती है हाँ, शादी करनी है तो ऐसी होगी, तुम्हारे लिए मैं उस और एक महल बनाऊंगी, बीच में झील होगी, मैं इस और तुम उस और, यदि कब हम मिल लिए तो मिल लिए बिना आमंत्रण के, तुम उधर से मैं इधर से, मैं इधर से नौका विहार तुम उधर से नौका विहार, मिल लिए अनइनवाइटेड तो मिलेंगे नहीं तो नहीं। वो कहता आखिर क्यों? वो कहती है जब भी दो व्यक्ति समीप आते हैं, मैत्री बढ़ती है और प्रेम बढ़ता है, तो धीरे धीरे घृणा आने लगती है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, और वो जो ताजगी है, वो जो स्पिरिचुअल रोमांस है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मैं और तुम, हमारा जो प्रेम है वो कम हो जाए, इसलिए तुम उधर रहोगे मैं इधर रहूंगा। हाँ, यदि तुम नहीं मानते तो तुम किसी और से शादी कर सकते हो, परंतु मैं केवल तुमसे प्रेम करती हूं और तुम्हारी यादों में जीवन बिता दूंगी, पर शादी होगी तो ऐसी, मंजूर हो तो करो, नहीं तो जा सकते हो। तुम उधर हम इधर और बीच में जी, पति उधर पत्नी इधर और बीच में जी, स्टूडेंट्स इधर टीचर्स इधर बीच में जी, आए, सेवा की, ओम शांति, सब कुछ किया, फिर प्रार्थना, वहां जाकर फोन मत करना, आई मिस यू। सेवा की, सब कुछ किया और अपने अपने रास्ते। जहां जहां लोगों ने अध्यात्म में समीप आने का प्रयत्न किया है, बारिश बहुत अच्छी है, आकाश से गिर रही है, कितनी अच्छी बूंदे है, धरती भी बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी है, परंतु वही बारिश जब धरती पर गिरती है तो कीचड़ होता है। संबंधों में डिटैचमेंट, ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप मोर ऑफन देन नॉट टर्न्स इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स, ऐसा कहा है लोगों ने। संसार भर में आश्रम रहे हैं द्वापर युग से, संसार भर में योगी और सन्यासी रहे हैं, नंस रहे, फादर्स रहे, कैसे पतन हुआ है नंस का और कैसे पतन हुआ है फादर्स का, क्यों वो फादर आज गृहस्थ में है, क्यों वो नन आज कोई गृहिणी बन गई है, कहां से पतन चालू हुआ, आश्रम में ही रहते, आश्रम में साथ ही रहते, साथ में ही पूजा करते, आराधना करते, चर्च में ही, मस्जिद में ही, किसी मठ में ही, किसी आश्रम मोनेस्ट्री में, जैन साध्विया, जैन साधु क्यों गिरे नीचे, इस एक कारण। इसलिए संबंधों में क्या चाहिए, डिटैचमेंट। तुम उस और हम इस और, बीच में जी, कौन सी जी, बाबा नाम की जी, जेल चाहिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मुरलियों में आता है बाबा, बच्चे बाप से कहते हैं बाबा ये बहन बहुत मीठी है, बाबा ये बहन बहुत अच्छी मुर्गी सुनाती है, बाबा इसकी आवाज बहुत मीठी है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे मीठी बहन नहीं मीठी मुरली है। व्यक्तियों में अटकना और फंसना नाम रूप की बीमारी कहीं पर भी आ सकती है। और याद रखना, योगियों को योगी ही आकर्षित करता है, योगी भोगियों की तरफ आकर्षित नहीं होता है, योगी योगिनियों की तरफ। तपस्वी तपस्विनियों की तरफ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्माओं की तरफ आकर्षित कर रहे हो कि संसार तो छूट गया, संसार से आत्माओं से कोई लेना देना नहीं, उनकी तरफ मोह नहीं जाता, मोह इधर जाता है। श्वेत वस्त्र भी कभी कभी विकार का द्वार बन जाता है, इसलिए हम इधर तुम उधर, मां इधर बच्चे उधर, बीच में जी, बच्चे बीच में मिल गए खेलते हुए नैया में तो हेलो ओम शांति और टाटा, नहीं तो उनको कुछ हुआ तो इधर कुछ होगा। खलील गिब्रान ने एक कविता लिखी है मां बाप के लिए, यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन, आपके बच्चे नहीं है, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू, तुमसे निकले हैं पर तुम्हारे लिए नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी मत समझ लेना ऊपर, अपना अधिकार मत समझ लेना ऊपर, दुख होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगा, तो क्या चाहिए बीच में जी, रखेंगे, ज्यादा नजदीक जाने का संकल्प नहीं करो, दुख परिणाम दुख है। बहुत सारे संबंध अगर हमारे अपने जीवन के देखे, जिन व्यक्तियों से हम मिलते हैं और दूरी रहती है, कभी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। डिस्टर्बेंस कहां चालू होता है? जिनसे लगाव हो जाता है, फिर उसने कुछ कहा, उसने कुछ बोला, वो यहां है कि नहीं, हजारों मील दूर पर है, व्हाट्सएप में हमारे एक मैसेज का उत्तर नहीं दिया तो दुखी। लगाव की जड़ें जबरदस्त है और समय पूरा हो रहा है, एक और मर्यादा आपको बताएंगे, डिजिटल मर्यादा है। कौन सी मर्यादा है? ये लेटेस्ट फॉर्म है। ब्रह्मा बाबा को शायद उस समय ये सब मर्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, डिजिटल मर्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक मर्यादा है, क्योंकि माया भी इलेक्ट्रॉनिक है, माया भी डिजिटल है, और शायद सबसे बड़ी माया वही है आज। एक चित्र किसी ने भेजा था 1990s का, बच्चा बाहर खेल रहा है, मां उसका कान पकड़ के घर लेके चल रही है, चल अंदर। अभी 2017, बच्चा मोबाइल पर अंदर बैठा हुआ है, उसकी मां पकड़कर बाहर लेके आ रही, बाहर खेल। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया। टीवी कौन कौन देखता है? सीरियल अच्छे अच्छे नहीं नहीं बताता हूं, थोड़ा सा हाथ खड़ा हो पीछे से। टीवी टीवी क्या है उसमें? धार्मिक सीरियल, धार्मिक सीरियल। जो धार्मिक सीरियल में कलाकार काम कर रहे हैं, उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? क्या वो विश्व कल्याण के लिए राम सीता की भूमिका कर रहे हैं? क्या उनका ये भाव है कि मैं राम बनूं तो सारे संसार मेरे जैसा राम जैसा बन जाए? क्या लक्ष्य है उनका? जिनका स्पिरिचुअल कैलिबर ही कुछ नहीं है, वो क्या हमारे आदर्श बन सकते हैं? अच्छा, सीरियल तो बहुत अच्छा है, बीच में एडवर्टाइजमेंट है, माया कहां है? देह की चमड़ी की बीमारी अभी छूटी नहीं है, चमड़ी में सामर्थ्य है आत्मा को परमधाम से नीचे खींचने का, योगी को भोगी बनाने का। क्या हम देख रहे हैं उस टीवी में, और कौन से सीरियल आ रहे हैं, कौन सी एड आ रही है, और जो न्यूज दिखाई जा रही है क्या उसमें बहुत शुभ विचार है या निगेटिव मीडिया है? कौन से इन्फ्लुएंस है? कहां बॉम्ब गिरा, किसने किसको मारा, इस नेता ने उसके बारे में क्या कहा, उसने ये कहा तो इसने क्या कहा? एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है। सोचो वो उत्तेजना हो, देखते देखते ही हमने अगर शरीर छोड़ दिया तो अंतकाल में जो स्त्री से मिले, किस स्मृति से शरीर छोड़ेंगे? इसके लिए टीवी हो सके जितना उसे दूर रहे बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। बाबा ने टीवी को टीवी कहा है। दूसरा मोबाइल, दिन रात मैसेजेस, कॉल, गेम्स, कुछ ना कुछ इसके ऊपर चालू। हाँ, अगर सेवा के लिए प्रयोग कर रहे हो तो दूसरी बात है, पर सेवा छोड़कर कुछ और ही चालू है। बाबा ने कहा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलो, यहां फेसबुक से संबंध नए बना रहे हैं, उल्टा हो रहा है काम। जिनको जानते नहीं उनको मैसेजेस और उनको रिप्लाई है और उनसे संबंध बढ़ रहा है। कहां उसका उपयोग करना है और कहां नहीं, इसका निर्धारण हमें करना है। तीसरा, इंटरनेट। माताएं तो कम यूज करती होगी, पर भाई और कुमार बहुत बैठे हैं।
इंटरनेट
ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बनने का टाइम अवधि कितनी है? वन क्लिक। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक अनन्य भाई विदेश का जिसने बहुत सारी सेवाएं की और कई सालों से सेंटर में था, अचानक उसका इंटरेस्ट कम हो गया मुरली में, योग में। बहनों को लगा क्या हो गया इसको, इतना आनंद है भाई जिसने बड़ी बड़ी सेवाओं की शुरुआत की थी, इसको अचानक क्या हो गया। उससे पूछा, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, बाबा वॉन्ट सेट आई शुड नॉट वॉक एनी मोर, बाबा शायद चाहता है कि अपने सेवाएं नहीं करूं, ऐसे ऐसे कारण दे रहे थे। फिर से पूछा क्या, फिर नहीं बताया, फिर कुछ बहन को उनके साथ बिठाया और पूछा क्या है, कुछ बताओ क्यों ऐसा हो गया। फिर उसने कुछ महीनों के बाद बताया, मुझे बुरी आदत लग गई, अमृत वेला करता हूं, कभी करता कभी नहीं, मुरली सुनता हूं, सेवाएं करता हूं दिन भर, और रात जब आती है तब यूट्यूब पे बैठकर वो सारा कुछ देखता हूं जो नहीं देखना है, अश्लील। और कब 11 बज जाते और कब 12 बज जाते और कब 1 बज जाता है पता नहीं चलता, और जब बुद्धि देहों में फंसी रहती है तो क्या अमृत वेला आत्मा उठ पाएगी और उस अतिंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेगी? क्या मुरली में रस आएगा? आएगा, पर क्या वो समझ पाएगी उन अव्यक्त महावाक्यों को? बिल्कुल नहीं। हो सके तो अनइंस्टॉल या डिसेबल, कोई आवश्यकता नहीं। डिजिटल माया के जागरूक, ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग ही करते रहते बस, क्लिक किया और घर पे आ जाती है चीज, जाने की जरूरत नहीं। ये भी एक एडिक्शन ही है। ऑनलाइन न्यूज, न्यूज ही पढ़ते रहते हैं, नए नए न्यूज, इंग्लिश न्यूज, हिंदी न्यूज, न्यूज 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 न्यूज। इसने कहा था बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस ने किया अभी वो क्या करेगी, इसका कोई अंत ही नहीं। न्यूज एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, फेसबुक एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, फेसबुक पे सेवाएं हमने क्या की, थोड़ी बहुत 50 फोटो भेज दिए किसी को, बेचारा देखो हमारे फोटो कैसा अत्याचार है उस पर। रात में फोटो पोस्ट कर देते, सुबह उठते सबसे पहला काम लाइक्स एंड डिसलाइक्स कितने हैं। योगी जीवन कुछ और जीवन, ये सब माया में आत्मा में फंसी है, इसके लिए ये मर्यादा है। ठीक है, तो इस भट्टी से जो जो बातें आपको अच्छी लगी उनको धारण करो, उन पर चिंतन मनन अध्ययन करना।